الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. امید ہے آپ اس حشرے میں نیکیوں کے مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوں گے، دوڑ لگا رہے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو کام میں لے آئیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان دنوں میں نیکی کرنا آپ کو زیادہ مشکل لگے گا رمضان کی نسبت. ان دنوں سے وہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو بار بار خود کو یاد دلائے کہ میں نے یہ وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے رمضان سے بھی زیادہ محنت ان دنوں میں کرنی ہے. یاد کریں، رمضان کے دن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی گزرے. آپ بار بار قرآن کی طرف بھاگتے تھے، آپ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میکسیمم آپ خود کو عبادت میں لگائے ہوئے تھے، تراویح پڑھتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے، تہجدیں پڑھ رہے تھے. تو وہی ماحول اب آپ کو خود بنانا ہے، ملے گا نہیں. یہ اس وقت ہمیں بنا بنایا مل گیا تھا نا، تو اس لیے ہمیں کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. اور یہی ہمارا امتحان ہے ان دنوں میں کہ ہم خود سے کیسے وہ ماحول بنائیں، خود سے کیسے سٹرگل کریں. جو ہم نے ان 30 دنوں میں رمضان کے سیکھا ہے، اس کو اب پریکٹیکل بنانے کا موقع ہے. اور اسی لیے یہ پروگرام بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ کہیں یہ باتیں ذہن سے محو نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت جلدی ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت جلدی شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری اور مصروفیات میں لگا دیتا ہے. اول تو اس عشرے کی کوئی اہمیت ہی زیادہ نہیں دی جاتی، ہمارے ارد گرد میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. تو لہٰذا پھر بہت ممکن ہے کہ کچھ دن تو جوش رہے، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے اور پھر انسان یہی کہے کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے. تو فرض تو تراویح بھی نہیں تھی، فرض تو قرآن پڑھنا بھی نہیں تھا رمضان میں، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کی نا. ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق کی. جو پورا سال نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں، لیکن اس وقت آ کے ہم سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. جب بھی سستی آنے لگے، وہ جو میں نے آپ کو کل کسان والی نظم بتائی تھی، اس کو یاد کر لیجئے گا. اور ذہن میں ہمیشہ میزان کے دو پلڑے لے کر آئیں کہ میں نے نیکی کے پلڑے کو بھرنا ہے اور گناہوں کو ہلکا کرنا ہے. اگر ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی بریک نہیں لگ رہی نا، ان کو بھی جاری رکھے ہوئے، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو ہمارے گناہ چاٹ جائیں. جی ہاں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، یا نیک کاموں میں دل ہی نہیں لگتا. بعض دفعہ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ نیکیاں ہی ختم کر دیتا ہے. یہ گناہ ایسی بری چیز ہے اور اس کی اتنی زیادہ اثرات ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ کہ جو محنت سے اس نے نیکیاں جوڑی ہیں، کری ہیں، وہ ساری محنت غارت ہو جاتی ہے. اور یہ شاید آج پتہ نہ چلے مگر قیامت کے دن ضرور پتہ چل جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو کوئی اور لے اڑے، اس لیے کہ فلاں کی غیبت کر لی تھی، فلاں کا حق مار لیا تھا، فلاں کے حق میں کمی کر دی تھی، فلاں سے جھوٹ بولا تھا، اس پہ الزام لگایا تھا، کسی کو دھوکہ دے دیا تھا، کسی سے بے ایمانی کی تھی، کسی کا راز فاش کر دیا تھا، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں یوں ہی اڑا دی تھیں، کسی کا تجسس کیا تھا، کسی کے بارے میں لگائی بجھائی کر دی تھی، کسی کو ہرٹ کر دیا تھا، کسی کو دکھ دے دیا تھا، کسی پہ ظلم کر دیا تھا، और किसी से कता ताल्लुक करके बैठे रहे थे, किसी से बदजुबानी की थी। सोचें ऐसे कितने ही काम हम जिंदगी में करते ही रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसा किया। और कोई बता दे तो हमारी अना आड़े आ जाती है, हम कहाँ मानते हैं। फिर हम मुख्तलिफ बहानों से और झूठ सच बोल के खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं और समझते हैं कि सब ठीक हो गया। इतना आसान मामला नहीं है, हम यहीं तो ठोकर खाते हैं। अभी हकूकुल्लाह की बात तो हुई नहीं, ये तो हकूकुल इबाद की बातें हो रही हैं। अभी तो अगर हकूकुल्लाह की बात करें तो कितनी नमाज़ें पता नहीं छोड़ चुके हैं, कितनी नमाज़ें बग़ैर वुज़ू के पढ़ चुके हैं, कितनी नमाज़ों में खुशू ही नहीं था, कितने विरासत के हकूक़ हमने छोड़े हैं, कितने पर्दे के अहकाम हमने तोड़े हैं, ज़कात देने में कितनी कमियां की हैं। हम इस तरफ तो अभी आ ही नहीं रहे। अगर एक फ़ाइल कोई खोला जाए ना कुल इबाद की, तो पता नहीं उसमें भी हम पास हो सकते हैं कि नहीं। कहीं अगर इंसानों के हकूक़ में ही हमें धर लिया गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन का नाम सबने सुना होगा। एक दफ़ा का वाक़या आता है कि वो अपने लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे, किसी जगह पड़ाव किया तो फ़ौजियों ने उस बस्ती से गाय पकड़ के ज़िबा कर ली। वो गाय एक औरत की थी, बूढ़ी औरत की। औरत अगले दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में, जो रास्ता था उसमें खड़ी हो गई पुल पे। सुल्तान जब वहाँ से गुज़रने लगे तो औरत ने सुल्तान को रुकने का इशारा किया। जैसे ही सवारी रुकी, बूढ़ी औरत ने आगे बढ़ के सलाहुद्दीन के घोड़े की लगाम थाम ली। सलाहुद्दीन बोले, ए नेकबख्त औरत, क्या बात है? वो बुढ़िया बोली, बादशाह, मेरे मुकदमे का फ़ैसला इस पुल पे करना है या आखरत के पुल पे? सलाहुद्दीन कांप गए और सुनते ही घोड़े से नीचे उतर आए। पूछा, अम्मा, आखरत के पुल पे फ़ैसला करने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है। अल्लाहु अकबर, जो फ़ैसला करना है वो मैं यहीं करूँगा। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या ज़्यादती हुई है? बुढ़िया ने अपनी दास्तान सुना दी तो सुल्तान ने अपने फ़ौजियों को उसी वक्त हुक्म दिया कि इस औरत के जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। बहुत सारे दिरहम और दीनार उसको दिए गए। उससे सुल्तान ने ख़ुद माफ़ी मांगी और उसको राज़ी करके इज़्ज़त और एहतराम से रुख्सत किया। इस वाक़े से सोच लें, जिस बंदे को ये खौफ हो ना कि यहाँ किसी का हक मार लिया तो यहाँ तो मार लेंगे, दूसरा भी चुप कर जाएगा, लेकिन उस दिन क्या होगा? किसी के साथ यहाँ तो ज़ुल्म ज़्यादती कर ली, किसी को दुख दे दिया, किसी को दबा लिया, क्योंकि आज दबा सकते हैं। आज किसी के साथ कुछ भी करें, हो सकता है वो चूँ चरा ही ना करे, वो इस पोजीशन में ही ना हो, वो बेबस हो और हम भी ज़ोर लगाते ही जाएं, क्योंकि आज हमारे पास ज़ोर है। लेकिन ये बताइए कि आखरत पे पुल पे अगर फ़ैसला करना पड़ गया तो क्या होगा? वहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ ये उस मैदान में खड़ा हो गया जिसके साथ आज हमने ज़्यादतियाँ की हैं, तो क्या होगा? लिहाजा जिसको ये खौफ हो ना, फिर वो फूंक फूंक के कदम रखता है, फिर चलती हुई ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, फिर उठते हुए कदम रुक जाते हैं, फिर ये हाथ गिर जाते हैं, फिर इंसान सोचता है वहाँ जाके कैसे हक अदा करूँगी, यहीं पे मामला साफ कर लूँ। ये बताइए मुझे और आपको, क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि मैंने किस किस के साथ ज़्यादती की है? अगर आज तक ये ख़्याल ही कभी नहीं आया तो अब सोच लेते हैं किधर किधर मुझसे लोगों के हकूक़ में कमियाँ हुई, मैं किस किस को तंग कर रही हूँ, मैंने कहाँ कहाँ किसी को दुख दिया। खुद को खुद हम अपनी अदालत में लेकर पेश हों, खुद को खुद कटहरे में खड़ा करें और सोच लें, अगर ये सब लोग जमा हो गए उस दिन तो मेरा क्या बनेगा। वो जिस दिन फर्दन फर्दन अल्लाह ताला ने सबको अपने हजूर अकेले अकेले पेश करना है, अकेले अकेले आना होगा। सूरत अल-हिज्र में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بس تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور بسرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی تو بہت مشکل ہے۔ ویسے ہی اگر سر پہ گناہوں کی گٹھڑی ہو اور لوگوں کی زیادتیاں اس میں بھری ہوئی ہوں, لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات, کمیاں کوتاہیاں یہ سب اٹھائے ہوئے ہوں, تو پھر حال کیا ہوگا۔ یوں بھی کسی بھی عدالت میں آپ بے گناہ بھی ہوں تب بھی خوف آتا ہے, عدالت کا ایک اپنا ہی خوف ہوتا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت جہاں پہ انسان سے بولا بھی نہ جائے, اور وہاں پہ انسان یہ سب لوگوں کے حقوق اپنے سر پہ لیے ہوئے کھڑا ہو تو کیا حال ہوگا۔ لہٰذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے, بہت اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کریں۔ جہاں پہ یاد ہے تو ابھی ان سے معافی مانگ لیں, جہاں پہ یاد ہی نہیں, پتہ نہیں انجانے میں اگر کچھ ہو گیا ہو, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, ہم انسان ہی ہیں, تو یا اللہ تعالیٰ تو بخش دینا, ان کو اجر دینا۔ تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خود بخشش مانگیں اپنے لیے, تو اس سے پہلے کم از کم ہم یہ معاملات تو صاف کر لیں, یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بخشش کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ آپ سوچیں, اللہ تعالیٰ کی عدالت تو وہ ہے جہاں معصوم انبیاء, وہ جو اولو العزم پیغمبر تھے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, وہ تک بھی خوف زدہ ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف کوئی ایک ایک خطا پوری زندگی میں ان سے ہوئی, کوئی گناہ نہیں ہوا, صرف ایک خطا۔ آدم علیہ السلام سے صرف وہ پھل کھایا گیا, نوح علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے صرف لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا, موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا صرف, کسی کو جان سے نہیں مارنے کی کوشش کی تھی, تب بھی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ حالانکہ ان کی بخشش ہو چکی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی بھی ہے, پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے اور ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ کہیں, اور ہم یہ کہیں کہ فیصلہ شروع کیا جائے۔ سوچیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ لوگوں سے فرماتے ہیں, لوگوں ایک دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا, مجھے بتاؤ تم کیا جواب دو گے, کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے, ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی۔ تب تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرماتے, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ گواہ رہنا۔ کیوں ایسا کیا؟ ان کو خوف تھا کہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اس کی میرے سے پوچھ ہونی ہے, کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, میں نے اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کر دیا۔ اسی لیے بھرپور مخالفتوں کے باوجود اور سخت ترین حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہی رہے, آپ نے کہیں کوتاہی نہیں کی۔ تو جس عدالت میں کھڑے ہونے سے اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی کانپتے تھے, ان کو اتنا احساس تھا کہ آئے ہم کیسے جواب دیں گے, تو ہمارے جیسے لوگ تو کچھ بھی نہیں, ہمیں کتنی فکر کی ضرورت ہے कि हम पर जो भी जिम्मेदारियां हैं, किसी के हकूक हमारे ऊपर हैं, चाहे औलाद है, चाहे खामिंद है, चाहे वालदैन है, चाहे रिश्तेदार हैं, इन सब का सवाल होना है, हम कैसे हिसाब देंगे? इसके ऊपर सोचना चाहिए, इस ज़ुबान का कैसे हिसाब देंगे, इन कानों का क्या सुना, इन आँखों ने क्या देखा, इस दिल में क्या कुछ था भरा हुआ, इस ज़िंदगी का हिसाब कैसे देंगे, इस जवानी का कैसे देंगे, हिम्मत का कैसे देंगे, पैसे का कैसे देंगे, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया? जब इंसान ये सब सोचता है ना, तो उसका सर चकरा जाता है कि अल्लाह, मैं तो कहीं भी खड़ा हुआ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, किस तरह मेरी वहाँ पे छूट हो सकती है? हाँ, एक तेरी रहमत का ही आसरा है कि तू अपनी रहमत की चादर में मुझे ढांप ले, तो तब मेरे कहीं खलासी हो सकती है। आप देख लें, ज़िंदगी के जितने दिन हैं, हमें तो याद भी नहीं क्या बोला हमने, कुछ ज़ुबानों से पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, याद ही नहीं क्या कुछ कहा है, कितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी की कलिमात बोल चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़ुबान का ही हिसाब हमें देना पड़ जाए ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सिर्फ़ एक ज़ुबान का। आप कानों को छोड़ें, आँखों को छोड़ें, आप और लोगों के हकूक़ में ज़्यादतियाँ और कमियाँ बेशियाँ ये छोड़ें, आप नमाज़ें और वो, सिर्फ़ एक ज़ुबान की बात कर रही हूँ, सिर्फ़ ज़ुबान की। तो हम कहीं पे भी नहीं खड़े हुए, हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत ही बचा सकती है। और बाकी कॉन्शियसली हम वाकई अपना मुहासबा करके, अगर अपने आप को कटहरे में खड़ा करके अगर हम अपना सख्त हिसाब लें, तो हो सकता है कोई चीज़ें याद आ जाए, हो सकता है कहीं जहन में आ जाए, तब खुद को जस्टिफिकेशन नहीं देनी, तब कोई बात नहीं है। अगर किसी से माफ़ी मांग ले, आज माफ़ी मांगना आसान है, यकीन जाने ये जो हमें मुश्किल लगता है ना, ये बहुत आसान है उसके मुकाबले में जो हशर के मैदान में होने वाला है। ये आज लोग मान भी जाएंगे, आज हो सकता है आप किसी को सॉरी बोलें, आप किसी को कहें, इतराफ़ करें कि मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे अब एहसास हुआ है, आप मुझे माफ़ कर दें, हो सकता है कर दे, कल को नहीं उसने करना, हशर के मैदान में कोई नहीं किसी को माफ़ करेगा, वहाँ तो लोग चाहेंगे कि किसी तरह किसी की सारी नेकियाँ हम ले जाएं, वहाँ किसी में रहम नहीं आएगा। आज लोग आपको माफ़ करने को तैयार हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं है हम यहीं पे सस्ते में छूट जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फिर महंगा सौदा होगा, वहाँ पे नेकियाँ देनी पड़ेंगी, यहाँ पे तो तोहफे तहाइफ दे दें, माफ़ी मांग लें, दूसरा खुश हो जाता है, वहाँ पे क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। तो जिसका हक देना है, अगर माल में से है, तो उनके हक उन तक पहुँचाएँ, और साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, इन दिनों को ख़ास तौर पे तौबा इस्तिग़फ़ार में लगाएं, एक दफ़ा बैठ के सोच के भी गुनाहों की माफ़ी मांगें कि या अल्लाह ये मेरे से गुनाह हुए हैं, और दूसरी तरफ उठते बैठते भी अपना तकिया कलाम बना लें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे अस्तग़फिरुल्लाह, उठे बैठे जैसे एक बंदे की रूटीन बन जाती है ना, उस तरह ये कलमा अपनी ज़ुबान पे जारी रखिए, पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी मिल जाए और बख्शिश हो जाए, पता नहीं कौन से वक्त अल्लाह ताला को हमारे पर रहम आ जाए। तो लामा हासिबना हिसाब यसीरा, ये मांगते रहें, क्योंकि हमें इंटेंसिटी नहीं जब पता होती ना किसी चीज़ की, तो हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब आप आज इस बात को सोच लें कि कितना सख्त वहाँ का मामला है, और ये हकूक़ुल इबाद के जो मामला आते हैं ना, ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हैं कि बंदों के अंदर रहम नहीं है, वो रब तो अर्रहमान और रहीम अर्रहमान रहीमीन है, सबसे ज़्यादा रहम करने, तो हो सकता है वहाँ पे कोई माफ़ी मिल सके, लेकिन बंदे नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने तो उस दिन यही कोशिश करनी है किसी तरह दूसरे को कंगाल कर लें। इसीलिए आपको वो हदीस पता ही होगी कि जो उस दिन का मुफलिस कौन है, उस दिन का फ़कीर कौन होगा, बंदों के हकूक़ में जिसने कहीं ना कहीं डंडी मारी होगी, उस दिन इनको सभी देना पड़ जाएगा। यही लोग खड़े होंगे कि हमें अपनी नेकियां दे दे ये बंदा, तो वो नहीं रहम करेंगे। लिहाजा उनसे यहाँ पर अपना मामला साफ कराएं, यहाँ तोबा इस्तिग़फ़ार भी करें, हमने ज़ुबान से क्या क्या बोला है अल्लाह ताला हमें इस पे माफ़ कर दे। इसी तरह इन दिनों में सदका ख़ास तौर पे बहुत करें, क्योंकि ये जो सदका है ना, जैसे हम रमज़ान में कर रहे थे कि हमारी कोशिश होती थी, सब करते हैं, हर एक बंदा जो उसकी इस्तात होती कोशिश करता है रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह के रास्ते में दे, क्योंकि सदका जो है वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब को सबसे ज़्यादा ठंडा करता है। यानी अल्लाह ताला का गुस्सा अगर किसी के ऊपर है ना, तो सदका अगर वो बंदा करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का गुस्सा उससे हट जाएगा। तो इस आशरे में भी कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा सदका करें, रोज़ सदका करें, और क़यामत के दिन यही सदका साया बन जाएगा जिसके नीचे इंसान खड़ा हो सकेगा। आजकल गर्मियों के दिन हैं, साए की अहमियत आजकल हमें ज़्यादा पता चलती है कि साया कितनी ठंडक देता है। कहीं धूप में आप चल रहे हो ना, तो कोशिश यही होती है कि जल्दी से साए में पहुंच जाए, तो क़यामत के दिन की गर्मी और उस दिन की तपिश और सूरज का करीब होना जब आप सोचते हैं, तो साए की अहमियत पता चलती है कि साया, ठंडा साया मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो सदका है जो साया बनेगा। यहाँ पे तो सर में दर्द हो जाता है अगर ज़्यादा देर धूप में रहें, उस दिन क्या करेंगे जब सूरज इतना करीब होगा। तो अगर आज कुछ पैसे दे के हम उस दिन का साया ख़रीद सकते हैं तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। सोचें कि ये सब चीज़ें वहाँ जाके स्पेंड करना चाहेंगे ना, कि आज ये पैसे ले लो और मुझे साया दे दो, तो उस दिन तो नहीं दे सकेंगे ना, हमारे पास कोई माल होगा और ना उस दिन कोई ख़रीदो फरोख्त होगी। ये तो आज है, सदका दें तो ये ना सोचें कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ और मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गई हूँ, देखो मैंने इसको इतना दे दिया। ये सोचिए कि ये मैं अपने लिए साया ख़रीद रही हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। इसी तरह अगर किसी की ज़कात रहती है तो इन दिनों में दें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इन दिनों में की गई नेकी किसी भी और दिन में की गई नेकी से ज़्यादा सुपीरियर है, बेहतर है, अफजल है। तो ज़कात भी आप चाहे रमज़ान में निकालते हैं, लेकिन अगर आपकी रह गई है तो ये बेस्ट टाइम है। सदका व खैरात भी आपने जो अगले महीनों में भी करना है वो इस वक्त कर लें। असल में हम इतने ज़्यादा गिनती में लगे रहते हैं ना, कि हमें ये बड़ी फिक्र होती है कि कितना सवाब मिलेगा। बच्चों वाली बात है, कितना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा। इन बातों को छोड़ दें, जिसके साथ आपका मामला है ना, उसके साथ हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि जब वो बता दे कि ये दिन उसको बहुत महबूब है और इनमें किया गया अमल उसको बहुत महबूब है, बहुत पसंद है, तो फिर छोड़ देना उस पर। एक दफ़ा वो राज़ी हो गया ना, तो इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, फिर हमें समझ ही नहीं आनी कि और क्या मांगे। इतना वो जूदो करम वाला, इतना वो सखा वाला है। हम तो उतना मांग के भी हमें नंबर दे दिया जाए ना, वो नंबर तो बहुत छोटा होगा। वो तो बेहिसाब देने वाला है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आपका मामला बड़े सखी के साथ है, गनी के साथ है, वो जो देने से डरता नहीं है, जो देने से कमी का अंदेशा नहीं रखता, उसको खौफ नहीं होता कि मैंने दे दिया तो क्या होगा। वो सखी है, वो करम करने वाला है। तो बस उसको खुश करने की फिक्र करें, इसको छोड़ दें कि कितने परसेंट मिलना है, और रमज़ान में तो इतना मिल रहा था अब कितना होगा। ये कोई पैसे थोड़ी हैं कि हम गिन गिन के उनका हिसाब करें। तो ये नेकियां हैं, इनके लिए बेहिसाब अजर की तवक्को रखिए। दिल खोल के आप नेकी करें और खुशी के साथ करें और इस चाहत के साथ करें कि बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला राज़ी हो गया ना, फिर तो कोई खौफ ही नहीं है, फिर फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए उस रब को राज़ी करने में अपना ज़्यादा वक्त लगाएं कि किस तरह वो खुश हो जाए। और जब इस एम को लेके चलेंगे ना, तो आपको नेकी के मौके भी नज़र आ जाएंगे। आप देखिएगा, आपको खुद नज़र आएंगे कि कहाँ कहाँ मैं नेकी कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला हमसे करा ले। आज जो ज़िक्र आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये बड़ा ही प्यारा ज़िक्र है। हमें ये होता है ना कि हम हज पे नहीं जा सके, आए हम कैसे हज वाली शहादतें ले सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह शाम 100-100 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, वो ऐसे ही है जिसने 100 हज कर लिए। 100 हज, तो क्या मुश्किल है सुभान अल्लाह कहना? कह के देखें एक दफ़ा, बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी एफर्ट लगी, कितनी परेशानी लगी, कितने पैसे लगे, कितनी ताकत लग गई, कुछ भी नहीं। तो क्या मुश्किल है उठते बैठते। और किसको नहीं आता ये कलिमा? आप खाना बना रहे हैं, आप घर की सफाई करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और छोटा सा कलिमा है, 100 हज के बराबर अजर मिल गया। और अल्लाह ताला को बड़ा महबूब भी है। तो ऐसे कलिमात को भी जारी रखिए कि अल्लाह ताला हमें इनके बदले में अगर इतना अजर दे दे। देख लें, वो फिर वही बात है कि आपका मामला किसके साथ है। आप हैरान भी होते होंगे कि इतने से कलमे पे इतना बड़ा अजर, 100 दफ़ा पढ़ लिए 100 हज के बराबर सवाब। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से कमी का अंदेशा ना रखें, उसका हाथ बहुत खुला है। तो उसकी तरफ देखें, जब भी नेकी कर रहे हो उसकी हाथ की तरफ देखें कि वो बहुत अजर देने वाला। फिर आपके दिल से ये भी निकल जाएगा कि मुझे लोग क्या देंगे। आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो जो देगा ना, वो लोगों की बेचारे क्या दे सकते हैं आपको? कोई तारीफ ही कर देगा, क्या होगा उस तारीफ से? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा उसके रिवॉर्ड्स की तरफ, उसकी तरफ से अजर जो है ना मिलने वाला, उसकी तरफ नज़र रखें। आप देखेंगे कि आपकी नेकी का शौक़ और बढ़ जाएगा कि मेरा रब बड़ा नवाजने वाला है। और इंसान जैसा अल्लाह ताला के बारे में गुमान करता है, अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ होता है। आप ये जब ये हुस्ने जन रखेंगे ना कि मेरा रब मुझे बड़ा नवाजेगा, मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, आप देखेंगे आपको ऐसा ही मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमसे ये नेकियाँ सारी करवा ले। या अल्लाह हमें तौफीक दे देना, क्योंकि हमारे अंदर कुव्वत ना ताकत कुछ भी नहीं है। तौफीक सिर्फ तेरी तरफ से। इतना सा कलमा भी लोगों को भारी पड़ जाता है कि कैसे बोले। तो अल्लाह तूने ही तौफीक देनी है, तू हमसे करा लेना। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।